तयापहृत चेतसाम् व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान्
हे कौन्तेय इंद्रिय भोगों में आसक्त लोगों की बुद्धि मोह से ग्रसित होकर अपनी चेतना खो देती है और अनिश्चय के कारण समाधि में स्थित नहीं होती। वेद त्रिगुणात्मक है, तू त्रिगुणातीत होकर द्वंद्वात्मक जगत से परे नित्य आत्मा में स्थित हो जा। आत्मान व्यक्ति को योगक्षेम की इच्छा भी नहीं रहती।
उदपाने सर्वतः संप्लुतो दके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भु माते संगोस्त्वकर्मणि।
जल से परिपूर्ण सरोवर मिल जाने पर जैसे व्यक्ति जल के अन्य स्थानों की उपेक्षा कर देता है, वैसे ही ब्रह्म तत्व को जानने वाले वेद प्रतिपादित कर्मकांडों से संबंध नहीं रखते। कर्म में तेरा अधिकार है, कर्म फल में नहीं है। तू कर्म फल का हेतु मात्र न बन, पर अकर्म में भी तेरी आसक्ति न हो।
कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरण मन विच्छ कृपणाह फल हेतवः।
हे धनंजय, फल में आसक्ति को छोड़कर एकाग्र चित्त से कर्म कर। सफलता विफलता में समान दृष्टि होना ही समत्व योग है। हे कुंती पुत्र, सकाम कर्म समत्व योग के सामने अत्यंत तुच्छ है। कर्म के फल का हेतु बनने वाले बड़े दीन होते हैं, अतः तू समत्व योग प्राप्त कर।
जहाती है उभे सुकृत दुष्कृते तस्मादि योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्।
समत्व योग में जिसकी बुद्धि दृढ़ है वो पाप और पुण्य दोनों ही छोड़ देता है। इसलिए तू ऐसे योग में लग जा, ऐसा योग कर्मों में कुशलता प्रदान करता है। ऐसे योग से जुड़कर मनीषी लोग कर्म फल का त्याग कर देते हैं और कर्म बंधन के परिणाम जन्म मृत्यु से मुक्त होकर निर्विकार परम पद प्राप्त करते हैं।
दाते मोह कलिलं बुद्धिर व्यतितरेष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला समाधा वचला बुद्धिस् तदा योग मवाप्स्यसि।
हे अर्जुन, जब तेरी बुद्धि मोह के दलदल को पार कर लेगी, तू सुने हुए और सुनने में आने वाले ज्ञान को छोड़ देगा, तभी तुझे वैराग्य मिलेगा। भिन्न भिन्न वचनों से विचलित तेरी बुद्धि जब परमात्म स्वरूप में अचल हो जाएगी, तभी तू इस योग को प्राप्त करने में समर्थ होगा।
स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितिधिः किं प्रभाषेत किं मासीत व्रजेत किं प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनुगतान आत्मन्ये वात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते।
भगवान के वचनों को सुनकर अर्जुन ने पूछा, हे केशव, समाधि में स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कैसा बोलता है, कैसा बैठता है और कैसा चलता है? तब भगवान कृष्ण ने उत्तर देते हुए कहा, हे पार्थ, जब व्यक्ति मन की सभी वासनाओं को त्याग देता है, अपनी आत्मा से स्वयं संतुष्ट होकर रहता है, तभी उसे स्थित प्रज्ञ कहा जाता है।
अनुद्विग्नु मना सुखेषु विगतस्प्रह वीतराग भयक्रोधः स्थितधीर मुनि रुच्यते यः सर्वत्रा नभिस्नेहस् तत् तत् प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता।
वो व्यक्ति दुख में उद्विग्न नहीं होता, सुखों में कामना रहित रहता है, उसमें राग भय क्रोध बिल्कुल नहीं रहते, ऐसे मुनि जैसे व्यक्ति को ही स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। ऐसा अनासक्त व्यक्ति शुभ वस्तु का अभिनंदन नहीं करता, अशुभ से द्वेष नहीं, ऐसे व्यक्ति को ही स्थित प्रज्ञ कहते हैं।
संहरते चायं कूर्मोङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते।
जैसे कछुआ सारे अंगों को अपने में समेट लेता है, वैसे ही जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को अपने मन में स्थित कर लेता है, उसे स्थित प्रज्ञ कहते हैं। निराहार रहने का संकल्प लेने वाले व्यक्ति के मन में विषयों की आसक्ति बनी रहती है, वो विषयों को प्राप्त करके पुनः उनमें आसक्त हो जाता है।
ततो यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम् मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परः वशे हि यस्य इन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता।
हे अर्जुन, बार बार यत्न करने पर भी इंद्रियां पुरुष के मन को मोह में डाल देती हैं, ये बड़ी बली होती हैं, इसलिए साधक को चाहिए कि वो अपनी इंद्रियों को पहले वश में करे और तब संपूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित करता हुआ मुझ में चित्त लगा ले, तभी उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो।
ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषूपजायते, संगात संजायते कामः, क्रामात क्रोधो भी जायते, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति।
विषयों का ध्यान करने से मन उनमें आसक्त हो जाता है। आसक्ति कामना को जन्म देती है। काम की पूर्ति न होने पर क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध से सम्मोह, सम्मोह से स्मृति का विनाश हो जाता है। स्मृति के विनाश से बुद्धि नष्ट होती है और बुद्धि का नाश ही व्यक्ति का नाश है।
राग द्वेष वियुक्तस्तु विषयान इंद्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर् विधेयात्मा प्रसाद मधि गच्छति, प्रसादे सर्व दुःखानां हानिरस्योप जायते, प्रसन्न चेतसो याशु बुद्धि पर्यव तिष्ठते।
हे पार्थ, जिसने अपना सब कुछ अपने वश में कर लिया है, राग और द्वेष से परे जब वो इंद्रियों द्वारा विषयों में संचरण करता है, तब भी अंतःकरण में आनंदित ही रहता है। अंतःकरण की प्रसन्नता सभी दुखों का विनाश कर देती है। ऐसे व्यक्ति की बुद्धि परमात्मा में स्थित हो जाती है।
बुद्धिरयुक्तस्य नाचायुक्तस्य भावना, नाचाभावयतः शान्तिः, अशान्तस्य कुतः सुखम्। इन्द्रियाणां हि चरताम् यन्मनो नुबिधीयते, तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नाममिवाम्भसि।
जो योग की इस अवस्था को नहीं प्राप्त करता, उसमें न बुद्धि रहती है न भावना। बिना भाव भक्ति के व्यक्ति को शांति कहाँ और अशांत व्यक्ति को सुख कहाँ। जैसे तेज हवा नाव को दिशाहीन घुमाती है, उसी प्रकार इंद्रियों में बंधा व्यक्ति का मन भी दिशाहीन होकर इधर उधर भटकता है।
यस्य महाबाहो निगृहितानि सर्वशः, इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने।
इसलिए हे महाबाहु, जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वही स्थिर बुद्धि रह सकता है। जो समस्त प्राणियों के लिए रात है, उसी में तो संयमी जागता है, और जिस इंद्रिय सुखों में सांसारिक जागते हैं, वो दिन परमानंद प्राप्ति में स्थित मुनि के लिए रात है।
मचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे सशांति माप्नो तिन काम कामी।
हे अर्जुन, जैसे जल से भरी नदियां समुद्र में आकर मिलती हैं और सब ओर से परिपूर्ण अचल समुद्र उससे विक्षुब्ध नहीं होता, उसी प्रकार स्थित प्रज्ञ में समस्त कामनाएं जब समाती हैं तो वो क्षुब्ध नहीं होता। ऐसे व्यक्ति को ही शांति प्राप्त होती है, भोगों के इच्छुक को नहीं।
विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृह निर्ममो निरहंकाराः सशांति मधि गच्छति एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति।
हे कुंती पुत्र, जो सारी इच्छाओं को त्याग कर ये मेरा है, ये मैं हूं, ऐसे अहंकार से रहित होकर विचरण करता है, वही शांति प्राप्त करता है। हे पार्थ, इसी को ब्राह्मी स्थिति कहा जाता है। इसको प्राप्त कर लेने पर पुरुष मोहग्रस्त नहीं होता और अंत में ब्रह्म पद प्राप्त करता है। अब प्रस्तुत है द्वितीय अध्याय का सारांश। भारतीय संस्कृति कर्म सिद्धांत पर आधारित है। जितना करोगे उतना ही मिलेगा। कर्म का भोग, भोग का कर्म। कर्मों से ही पाप पुण्यों का संचय होता है और पाप पुण्यों से ही व्यक्ति को अगला जन्म मिलता है। अगले जन्म का कर्ता मनुष्य स्वयं बन जाता है। कहा गया है, यदि चेद ईश्वरः तत् तव कर्म फलम्। यदि ईश्वर है तो वो तेरे ही कर्मों का फल है। जितना सुकृत होगा, पुण्य होगा, उसी अनुपात में भोग मिलेगा। पुण्यों की अधिकता ही मनुष्य के लिए स्वर्ग भोगों का मार्ग खोलती है और जब तक पुण्य नष्ट नहीं होते तब तक वो स्वर्ग सुख भोगता है। पुण्यों के क्षीण होने पर व्यक्ति पुनः संसार में लौटकर 84 लाख योनियों के चक्रजाल में फंस जाता है। इसीलिए कृष्ण फल की कामना से रहित कर्म की स्थापना करते हैं। कर्म फल की कामना मनुष्य को कर्म बंधन में बांध लेती है। जैसे दलदल में फंसा व्यक्ति जितना यत्न करता है उतना ही दलदल में धंसता चला जाता है। कर्म बंधन के कष्टों से मुक्ति पाने के लिए भारतीय धर्मों ने आत्म शुचिता पर बहुत ध्यान दिया है। वैदिक धर्म हो या बौद्ध धर्म, जैन मत हो या भागवत, वैष्णव, शैव, शाक्त, सभी में आत्म शुचिता को प्रमुखता दी गई है। आत्म शुचिता बिना निरासक्त कर्म के उपलब्ध नहीं हो सकती। फल की इच्छा न करते हुए यदि हम कर्म करेंगे तो हम में कर्ता भाव का उदय नहीं होगा। हम और हमारे कर्म पृथक पृथक रहेंगे। शारीरिक और मानसिक कर्मों का संयोग आत्मा से नहीं होगा। इस स्थिति में आत्मा कर्म बंधन से कलुषित नहीं होगी। क्या ये वृक्ष कर्म नहीं करते? रात दिन कर्म करके जो फल उत्पन्न करते हैं वे फल जगत को दान कर देते हैं। ये नदियां पानी स्वयं नहीं पीती किंतु रात दिन कार्यरत हैं। प्रकृति के जितने भी अवयव हैं वे सब सबके लिए कर्म करते हैं। महान विभूतियों के यही लक्षण है, जो रात दिन परोपकार के लिए यत्न करते हैं किंतु प्रतिदान में कुछ नहीं लेते। उसी प्रकार कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं कि वो क्षत्रिय है, उसका धर्म है कि वो धर्म की रक्षा करे, अपने धर्म युद्ध से उन लोगों का विनाश करे जो अजगर बनकर पूरी मानवता को निगले जा रहे हैं।
शरणं।